में असल ताकत मौजूद है, उसमें तरक्याती फंड भी हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी है। जो मुंतखब होते हैं रुकन, वो तो अपने हलकों में पांच पांच साल भी नहीं रह जाए, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर एक मुतबादल क्यादत सामने आ रही होती है जो लोगों के अंदर मौजूद होती है, उनके साथ ही होती है, उनके घर भी उन्हीं के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से फिर जो ऊपर का तबका है, बालागत तबका, जो सिर्फ MLA MPA का इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए विदन मुस्लिम लीग में ही बहुत बड़ी मुखालफत थी। पीपल्स पार्टी में भी सेम यही बात है कि वो नहीं चाहते, वो लोग जो दोनों पार्टियों के ऊपर बैठे हुए हैं कब्जा करके, कि नीचे की सतह पे क्यादत जो है वो मुंतकिल हो और नीचे से एक उभरती हुई क्यादत सामने आए जो आगे जाए। पाकिस्तान में जो अफगान असम्बली है, उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उन्होंने कानून साजी करनी है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे भी उनके पास ही रहे, सड़कें भी वही बनाए, नालियां भी वही बनाए और असम्बलियों में भी वही बैठे।
तो असम्बलियों में फिर जैसे CSS के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे कोई और पढ़े लिखे लोगों को ले जाने का कोई और तरीका ढूंढ लिया जाए? खैर, ये तो एक जिम्मन सवाल था। माजिद सिद्दीकी साहब सिंध से, कराची से हमारे साथ हैं। सिंध की पॉलिटिक्स का और इन दूसरे मरहले के इंतखाबात का एक क्विक एनालिसिस पहले उनसे लेते हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। सिंध में सिवाय बदीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आलमोस्ट उसने क्लीन स्वीप किया है, और जहाँ जिस पार्टी का असर रसूख था उसी तरह के नतायज आ रही हैं। तो ये जो हम सुनते हैं, टेलीविजन का प्रचार है, बड़ी सियासी बलूगत भी है, लोग नए ट्रेंड्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो पाते या क्यों नहीं हुए हैं बलदियाती इंतखाबात में? लोग गवर्नेंस भी मांगते हैं। जी जी
हाँ
माजिद,
आपकी आवाज़ कट रही है सर, जी, कैन रिपीट योर क्वेश्चन।
जी, मेरा सवाल ये था, एक तो पहले हमें थोड़ी सी एक जनरल ओवर लुक दीजिएगा इन इलेक्शंस की, नतायज की आलमोस्ट वही हैं जो पहले मरहले में थे, और इसमें ज़िमनन मेरा सवाल ये था कि दूसरी तरफ हम एक बड़ा शोर सुनते हैं कि जी लोग तब्दीली भी मांगते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि जी गुड गवर्नेंस भी चाहिए है, लेकिन स्टेटस को अपनी जगह पर मौजूद है, जो पार्टी जिस तरीके से जहाँ पर अक्सरियत रखती है कम उबेश वही नतायज आए हैं।
देखिए, असद सिंध में जो उसकी बुनियादी वजह वो ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का अल्टरनेटिव कोई मौजूद नहीं है और प्रोविंशियल लेवल पे कोई नहीं है, और फिर दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि पीपल्स पार्टी बहरहाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की का असर रसूख होता है, और आपको पता है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे यहाँ ये रियलिटी है कि इस्तेमाल होते हैं। तो अल्टरनेटिव ना होना, और प्लस ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास है, तो उस ये बुनियादी वजह है कि जो रिजल्ट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के हक में नजर आते हैं। लेकिन जहाँ आपने देखा कि बदीन में कल जो पुलिस वहां पे निगरानी नहीं कर रही थी, रेंजर्स थी और फोर्स थी, तो आपने देखा कि वहां पे रिजल्ट्स जो हैं लोगों ने डिफरेंट दिए हैं। लोगों में चेंज की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध की सतह पर पीपल्स पार्टी का कोई अल्टरनेटिव मौजूद बन नहीं पा रहा। यानी बहुत कोशिश की जा रही है, इतिहाद बनाए जा रहे हैं, खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले हैं जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की क्यादत से नाला है, वो भी चाहते हैं कि कोई अल्टरनेटिव बने, लेकिन उस तरह की कोई शक्ल बन नहीं पा रही। अब लगता यह है कि जो बदीन में जो ये एक छोटा सा मार्का हुआ है बिटवीन मिर्जा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आज मैं टीवी पर सुन रहा था मिर्जा साहब कह रहे थे कि अब मैं अपनी इस पूरी मूवमेंट को दूसरे जो करीबी अर्जा है वहां पर,
लेकिन वो बहुत लीनियंट है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी बहुत लीनियंट है, तो इस बात के भी इम्कान उतने ही मौजूद है कि वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ अलायंस में चले जाएं जितना वो बाकी पार्टियों का नाम लेते हैं। ये बताइएगा, क्या किसी एतबार से, अगर ये गली मोहल्ले के इलेक्शन हैं, तो किसी एतबार से इनको ये समझा जा सकता है कि ये वाकई पार्टियों की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ तो बहुत शख्सी वोट बन जाता है ज़ात बिरादरी का, जैसे इरशाद राणा साहब ने कहा कि पंजाब के अंदर PMLN ने सबसे ज़्यादा वोट जीते, लेकिन जो दूसरे नंबर पे हैं वो भी हो सकता है उन्हीं के साथ वाबस्तगी रखते हों, लेकिन ज़ाती हैसियत में इंडिपेंडेंट इतने कामयाब हो गए हैं कि कोई पार्टी उनके साथ मैच नहीं कर रही है, तो फिर वोट तो ज़्यादातर शख्सी हुए।
ज़ात बिरादरी हमारी यहाँ रियलिटी है, पंजाब में भी, सिंध में भी, लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में जब जनरल मुशरफ के ज़माने में, स्पेशली मैं सिंध के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, एक खास तौर पर एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया था जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट बड़ी बड़ी फैमिलीज को दिया गया, छट्टा शिराजीज को दिया गया, बैरों को घोटकी दिया गया, इसी तरह जो है अरबाबों को जो है वो उमरकोट और थपार कर दिया गया। तो एक अरेंजमेंट किया गया था ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट है या जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो सिंध को अपनी मर्जी से डील कर सकें। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो जरदारी साहब की सरदारी में उसी अरेंजमेंट को एक्चुअली मेंटेन किया गया है। हालांकि पीपल्स पार्टी के हक में ये बात है कि वो पार्टी बेसिस पे वोट ले, यानी इस बात को प्रोपेगेट करे कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए, किसी खानदान को, किसी कबीले को, किसी सरदार को वोट ना दिया जाए। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन अभी ग्राउंड पर यही है कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, इस किस्म के अरेंजमेंट को मेंटेन कर रही है और ये एक अलमिया है।
इशारा ना साहब ये बताइएगा, अभी हमने पिछले दिनों बहुत बहस सुनी है गुड गवर्नेंस की, खासतौर पर जब आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया कोर कमांडर्स के इजलास के बाद, फिर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस हैं उनका भी स्टेटमेंट इसी रेफरेंस में आया, तो क्या अब हम क्या समझें इन बलदियाती इंतखाबात के नतीजे में? अब गुड गवर्नेंस आने वाली है, उनको बजट भी एलोकेट किया जाएगा, निचले लेवल पे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, या फिर ये कि दूसरा इसका जाविया ये भी है कि जिनको लेट्स से कि आप ब्लेम करते हैं कि उनके पास गुड गवर्नेंस नहीं है लेकिन उनके पास पब्लिक मैंडेट है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है गुड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करने का?
देखिए, जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है तो फिलहाल इस तरह है कि पंजाब में अभी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में एक रिपोर्ट पेश हुई है कि राजधानी की सबसे ज्यादा वारदातें चोरी की वारदातें भी सबसे ज्यादा पंजाब में हुई है, तो गुड गवर्नेंस का तो इससे अंदाजा हो जाता है। और फिर खुद शहबाज शरीफ साहब ने अभी पहले अपने एक इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुल बनाना या बसें चलाना गुड गवर्नेंस नहीं है। उन्होंने वही बात अपोजिशन कहती है कि गुड गवर्नेंस से मुराद क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस की जहाँ तक ख्वाब है वो बहुत दूर है, लेकिन इन बलदियाती इंतखाबात से एक फायदा जरूर होगा कि इनके जो पंजाब के अवाम या पाकिस्तान के जो भी जो अवाम है उनको कम अज कम निचले लेवल पे क्यादत ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसकी कम अज कम बात सुन सकेगी, सुनवाई जरूर हो सकेगी। ये वो लोग नहीं है जो इलेक्शन तो घाटी में लड़े और रहते वो डिफेंडर हो। तो इस हवाले से गुड गवर्नेंस की जाने जो स्टेप तो बहरहाल बलदियाती इंतखाबात बन जाते हैं, उन लोगों के पास आ जाती है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर मौजूद है। अब जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है तो उसका तो फैसला ऊपर से होना है। विफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं कि वो गुड गवर्नेंस देते हैं। गुर्बत का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये सारी चीजें जो है जो ऊपर की सतह का काम है ये निचली सतह के जो लोग हैं इनका कम अज कम ये है कि ये बैठक के अंदर बैठ के लोगों के बारे में मामला।
लेकिन राणा साहब आपने स्टडी तो किया होगा, अभी जो इन्होंने
जो गुड गवर्नेंस की बात है तो वो सूबाई हुकूमतों के अपने फैसले हैं और उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए गुड गवर्नेंस मिल सकती है। और उसमें ऐसा नजर आता है कि सिंध के ऊपर तो खैर इल्जाम बहुत ज्यादा लगता है लेकिन पंजाब किसी सिंध से पीछे नहीं है। यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला वैसे ही है, गुर्बत सिंध से भी ज्यादा है, सेहत का मसला एक बेड पे तीन तीन चार चार लोग पड़े होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बलदियाती इंतखाबात अपनी जगह पे एक फैशन के तौर पर तस्लीम किए जा सकते हैं लेकिन गुड गवर्नेंस से इससे कहीं कोई दूर से भी ताल्लुक नहीं बनता नजर आ।
सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मतलब एक और एलिगेशन था, एक सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं या करप्शन की जो गुंजाइशें होती हैं, अब अगर बेशक इख्तियार या इवन वसाइल भी निचली सतह पे मुंतकिल हो जाएं लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है तो वो कैसे ट्रांसलेट होगी निचले लेवल पे? एक बात मैं पिछले प्रोग्राम में भी गालबन एक हवाला दे चुका हूँ कि यहाँ वहाँ पे तो फिर जब यूनियन काउंसिल के अंदर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बैठा है तो वहाँ पे तो आपको अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेना हुआ तो आपको उसके लिए भी ब्राइब करना पड़ेगा, तो वो तो निचली लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगा, उसमें बेहतरी कैसे आएगी, क्या आसार होंगे उसके?
देखिए, जहाँ तक बेहतरी का मामला है तो उस सूरत हाल इस तरह है कि पंजाब के अंदर अब जो मुस्लिम लीग जीती है और मुस्लिम लीग में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे भी मुस्लिम लीग नहीं है, तो उस सूरत हाल तो ऐसी लगती है कि पंजाब में भी अब वही लोग निचले चले गए हैं, निचले सतह पे आ गए हैं जो ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हुए वालों की ही आशीर्वाद से नीचे लोग आए हैं।
सही है।
ये सारा निजाम है, ये निजाम किस तरह से तब्दील नहीं होगा जिस तरह हम ख्वाहिश रख रहे हैं कि ये ग्रेजुअली
सही या ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, अभी तो बजट भी देखना है। माजिद
इसके लिए बहुत जद और बहुत तवील मेहनत और
वो सब करना होगा। माजिद साहब आप बताइएगा, अब ख़ास तौर पे अब जब आलमोस्ट चारों सूबों के अंदर लोकल बॉडीज़ कायम हो चुकी हैं या होने वाली हैं, दो सूबों में ख़ास तौर पर तीसरे मरहले के बाद कायम हो जाएंगी, क्या ऐसा भी कोई आपको उनके प्लान्स में नज़र आता है कि उनके पास डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है नीचे ज़िलों को, तहसीलों को, यूनियन काउंसिल्स को, और वो फाइनेंशली उनको रिस्पॉन्सिबल या इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, या उसी तरह MNAs और MPAs उन्हीं के पास ये पावर्स और इख्तियार होंगे?
देखिए असद, ये अब लोकल बॉडी सिलेक्शन हमारे पास हो चुकी है पाकिस्तान में, और अब ये सबसे अहम तरीन सवाल जो अभी आपने रेज किया, एक तो ट्रांसपेरेंसी का, दूसरा ये कि क्या एक्चुअली ग्राउंड पे विलिंगनेस मौजूद है। तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि ग्राउंड पे विलिंगनेस मुझे नहीं लगता कि कोई मौजूद है, क्योंकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पाकिस्तान में लोकल बॉडीज जो है वो मुनक्किद की गई। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए जमाती बुनियादों पर लोकल बॉडीज इलेक्शन मुनद की गई है, और उस पर एक डेढ़ साल का वक्फा जो है दिया गया, मतलब टाइम जाया किया गया है। तो रिलक्टेंसी मौजूद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे। मेरा नहीं ख्याल कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली में इतने कोई इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, जहाँ उनके अपने पार्टी के लोग बैठे हुए, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए गालिबन वहाँ पे फंड्स भी रिलीज हों और शायद एक आध काम भी हो जाए, लेकिन मोरल लेस होगा यही कि जो पार्टी हेड्स हैं या जो MNA MPA जैसे आपने जिक्र किया, उनके पास ही सारा इख्तियार होगा, उनकी ही छाओं में सारा ये सिलसिला, उनकी अम्ब्रेला के अंदर ही सिलसिला चल रहा होगा। तो विलिंगनेस अनफॉर्चुनेटली असद ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, न सिंध में न पंजाब में।
अच्छा माजिद, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ, और इसा राणा साहब से भी वही, आपने भी कम बेश वही कहा और इसा राणा साहब ने भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, हमें वो उसकी फेसबुक पे, बाकी उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे और इवन जलसे जुलूसों में बहुत नज़र आती है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं होती है। उसके एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टियां हैं, तो उनके ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ना आता है ये वो, लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनका वर्कर है, कमिटेड है उनके साथ? क्योंकि ये फ्लास, ये खामियाँ तो उनके साथ भी उतनी मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतनी कमिटमेंट इन पार्टियों के साथ भी तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो कैसे मैनेज करते हैं? क्या वो इलेक्टेबल्स को अपने पास अट्रैक्ट करने में ज्यादा कामयाब है? रीजंस क्या हैं आपके ख्याल में?
नहीं, असल उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI का ज्यादातर जो फोकस है वो नेशनल इलेक्शंस पे है, जो जनरल इलेक्शंस इस पे रहा है। ये पहली बार है कि वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इस तरह गए हैं, वो एक्चुअली उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप वर्कर की बात छोड़ दें, वर्कर की बहस बाद में आएगी, खुद उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पंजाब की सतह पर, उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया उस तरह जिस तरह उन्होंने जनरल इलेक्शंस में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए जिस तरह उन्होंने शो किया था। एक तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया उस तरह, जिस तरह का इंटरेस्ट लेवल दरकार था वो PTI ने उस तरह का इंटरेस्ट लेवल शो नहीं किया, जिसकी वजह से जाहिर है। और फिर ऑन दी कॉन्ट्ररी आप देखें कि पंजाब में जो PMLN है वो, आप सही कह रहे हैं, एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी है और उसको पता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल और नेशनल के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। तो ये एक तजुर्बे और ना तजुर्बेकारी के दरमियान एक इलेक्शन था, जो जाहिर है तजुर्बे ने
नहीं, लेकिन क्या इलेक्शन मैनेज करना का तजुर्बा या पॉपुलरिटी, मेरा सवाल बुनियादी ये है, क्योंकि हम तो ये भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को उनके वजह से हटा दिया जाता है तो दो बंदे स्ट्रीट पे नहीं आते, और जो इस वक्त MNAs और मिनिस्टर्स की लाट आपको नजर आती है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई आपको नजर आती है, तो इसमें पॉपुलैरिटी कहाँ पे है?
देखिए पॉपुलैरिटी का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉपुलैरिटी मौजूद है लेकिन वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है।
वोटर को कैंडिडेट मोबिलाइज कर रहा है या ऊपर लीडर मोबिलाइज कर रहा है? पंजाब की पॉलिटिक्स में खास तौर पे आप बताइएगा,
इसका शायद PTI को इदराक नहीं था, जिसकी वजह से गालिबन वो अपने वोटर को इस इलेक्शन के लिए, आप देखिए रिसेंटली जो लाहौर में जो इलेक्शन हुए NA 240 माफ कीजिएगा, जो ये लाहौर में जो भी हुए थे नेशनल असेंबली के इलेक्शन, उसमें PTI ने बिल्कुल क्लोज कंपटीशन किया विद नवाज लीग। तो और लोकल बॉडीज में जब आपने लाहौर को ट्रांसलेट किया तो लोकल बॉडीज में PTI कहीं नहीं थी, तो इसका मतलब है कि PTI को तजुर्बा नहीं और PTI ने इंटरेस्ट नहीं लिया, वोटर मौजूद है, सपोर्टर मौजूद है, प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं हुआ, कोई था नहीं जो उनके पास जाता, कई सारे इश्यूज PTI के घूमते रहे और वो इस तरह उनको कैपिटलाइज नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी को, और मेरे ख्याल में अभी इनको एक दो इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा शायद, तब जाके लोकल बॉडीज के मैथमेटिक्स और साइंस को समझ पाएंगे।
जी इशारण साहब, पंजाब की पॉलिटिक्स खुसूसन इंटरनल पंजाब, उसकी पॉलिटिक्स अफराद अहम है। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, एक खातून इलेक्शन लड़ती है इंडिपेंडेंट, फिर काफ लीग में शामिल हो जाती है, फिर अगला इलेक्शन काफ लीग में जीत जाती है, फिर वो नून लीग में आ जाती है, तो क्या वो मेरे इलाके के जो वोटर थे, मैं जनरली एक जनरल सवाल करना चाहता हूँ, उन्होंने उस खातून को वोट दिया था या उनके लिए वाकई जनरल मुशर्रफ उस वक्त बड़े पॉपुलर थे और नवाज शरीफ साहब नहीं थे, या अब नवाज शरीफ साहब ज्यादा पॉपुलर हैं उनके नजदीक, क्या क्या होगा आपके ख्याल में?
मैं आज कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की भी अपनी एक मुख्तियात है ना, अगर हम आज इस जगह पे खड़े हैं तो उसके जिम्मेदार बाहर से तो कोई बंदा नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम ही है। देखे ना NA-1-2 में जिस तरह वोट दिखा, जिस तरह पैसे खर्चे गए, जिस तरह लोगों को रिश्वतें दी गई, पाकिस्तान का महंगा तरीन इलेक्शन वो हुआ, और लोगों ने उस इलेक्शन में हाथ रंगे, अपने वर्कर्स ने भी हाथ रंगे, वहाँ पे इंतखाबी के पैसे लिए गए, 50,000 रुपए एक रेट था और 10,000 रुपए रोजाना उन्हें वैसे मिलता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी गंद इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी अवाम खुद है, और वो खुद नहीं चाहते कि कोई बड़ी तब्दीली आए इस सारे निजाम में। देखिए आपने जो मुझे पहले सवाल किया था कि कैसे हम क्लियरिटी लाए, तो कैंडिडेट जो हैं उनको पढ़े लिखे तालीम याफ्ता कैंडिडेट जो वो आ ही नहीं सकते, जितना पैसा खर्च होता है इस इलेक्शन के अंदर और जिस तरह ताकत का इजहार होता है इस इलेक्शन के अंदर, वो तो एक सफेदपोश आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो एक डॉक्टर हो, वकील हो, वो टीचर हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इतना ज्यादा पैसा खर्च सके। वो तो दो लोगों को चाय भी पिला सकता है, यहाँ पे डेरेदारियां होती है, यहाँ पे बकायदा जो शाम को सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारा एक जो इलेक्शन निजाम है, इंतखाबी निजाम, वो हाईजैक हो गया है।
सही, और ताकतवरों के अगेन ताकतवर लोग, यानी पार्टी फंड से इलेक्शंस नहीं होते, ताकतवर लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका इशारण साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। माजिद सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन अब हम बात करेंगे दहशत गर्दी और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का रिजॉल्व, पहले उस पर बात होगी और फिर ओवरऑल दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन है उसको दुनिया की लीडरशिप ने कैसे इंगेज करना है या उसको काउंटर करना है, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ा रिजॉल्व शो कर रही है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मिनट की खामोशी इख्तियार की, हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़ात हुए हैं पेरिस के अंदर या इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर, उस पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मिनट की खामोशी इख्तियार की। वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ, उन्होंने फ़्रांस की एम्बेसी जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और फ्रांसीसी कौम के साथ यकजहती का इजहार किया, और उनका एक मुतालबा यह था कि इस जो मेनेस है दहशत गर्दी का, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना चाहिए, पाकिस्तान फ्रांस और दुनिया को से हर सूरत में इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाना चाहिए। सवाल यह भी है कि आज के दिन जब हम इस पर बात कर रहे हैं, हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं कि दहशत गर्द अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। माली में जहाँ पर ज़्यादातर अलकायदा की वारदातें रही हैं, वहाँ पर उसने एक होटल को यरगमाल बना लिया है। दाइश जो है वो पेरिस में कार्रवाई कर चुकी है, वाशिंगटन को, अमरीका को वो थ्रेट कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान और उस रीजन के अंदर तालिबान का फिनामिना, मुख्तलिफ तहरीकें टूटी हुई, इसी तरह और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि वो उनके बजाय इसके कि उनके नज़दीक घेरा तंग होता, उनके पार पुर्जे ज़्यादा फैल रहे हैं। दुनिया कैसे उसको काउंटर करेगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का रिजॉल्व। डॉक्टर फारूक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजिक विजन इंस्टीट्यूट, वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर फारूक हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान बजाते खुद बड़ा तवील अरसा दहशत गर्दी का शिकार रहा है और अभी भी जंग लड़ रहा है, 15 बरस हो चुके हैं, एक जनरेशन इसमें पल चुकी है। आपके ख्याल में आज जो रिजॉल्व हमें खैर सामने आता है, पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस से दुनिया इस्तेफादा कर सकती है या अभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत है कि दुनिया उसके साथ आके खड़ी हो?
देखिए इसमें बात यह है कि पहले पाकिस्तान को अपने अंदर देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं,
ہماری ترجیحات کیا ہیں, اور پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو ٹیررزم کا رجحان ہے یا ایکسٹریمزم ایکچولی پہلے شروع ہوتا ہے پھر وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے ٹیررزم کی اور تشدد کی. ایک تو اس کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو فاتح کا علاقہ پہ وہاں پہ جو کاروائی ہو رہی تھی, قبائل نے ہتھیار اٹھا لیے تھے, اس میں پاکستان کی فوج نے اور اس سے پہلے سوات میں بھی ہوا, وہ تو آمنے سامنے کی بات تھی. اب انہوں نے ہتھیار اٹھایا, پاکستان کی فوج نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور بڑی حد تک ان کو زیر کر لیا. دوسری جو ایکسٹریمزم ہے جو کہ بعد میں وہ شکل اختیار کرتی ہے ٹیررزم کی, وہ ہے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں جو سیکٹیرین گروپس ہیں. اب سیکٹیرین گروپس بھی اس قسم کی کاروائیاں یہاں پہ کرتے رہے ہیں, لیکن پنجاب کی حکومت, شریف برادران کی حکومت, ان کے معاملے میں یہ تاثر ہے پاکستانیوں کا کہ وہ بہت نرم ہے, پر انہوں نے اس طرح ان پہ سختی نہیں کی جو کہ جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی, وہ کر سکتے بھی تھے کیونکہ یہ لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے یہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. اور اب دیکھیے حال ہی میں جو فوج نے بھی اپنی وہ اسی طرف کیا ہے کہ اتنی جو وہاں پہ طے ہوا تھا آل پارٹی کانفرنس میں اس پہ تو عمل کیا جائے, نہ مدرسوں کی چیکنگ ہو رہی ہے جو کہا گیا تھا اس کو مانیٹر کریں, نہ ہی جو بینڈ آرگنائزیشن اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دوسرے نام سے اپنے آپ کو وہ کر لیتی ہیں اور وہی شخصیت ہوتی ہیں تو آپریٹ کر لیتی ہیں, تو اس طرح سے بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے انسرجنسی ہو, جب ٹیررزم کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اس کا تو حصہ ہوتا ہے کہ فوج نے ان کو زیر کر دیا زور پہ, لیکن اس کے فوراً بعد وہاں پہ میسیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو تھوڑے بہت بچ کے ہیں ٹیررسٹ وہ بالکل کارنر ہو جائیں اور جو باقی عوام ہے وہ مین اسٹریم میں آ جائے. یہ کام ہے سیاسی جماعتوں کا, فوج نے تو اپنا کام کر دیا لیکن سیاسی جو شریف رازدان ہیں یہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ کو ہم نے سب نے سنا, دیکھیے وہ بہت اپسٹ ہیں فاتح کے لوگ, وہ بار بار ریفارمز کی بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے انگریزوں کے جو پرانے قوانین ہیں ان کو ختم کیجئے, ہمیں آپ کسی قسم کا ریپرزینٹیٹیو فارم آف وہاں پہ سیٹ اپ پولیٹیکل دیجئے, اور پھر اکنامک ریفارم بھی جو یہ لوگ نہیں کر رہے, یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس سے پریشانی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک صرف کام نہیں ہے کہ زور لگا کے اور آپ ان کو زیر کریں, اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں.
ٹھیک, اور مسئلہ کیا طریقے کیا طریقے گورنمنٹ اس میں انوالو کریں, کیونکہ ابھی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر پہلے پاکستان کی فوج کا بیان آیا گڈ گورننس ضروری ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یا جو مقاصد اس میں طے کیے گئے ہیں ان کے اصول کے لیے, پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ اسی ریفرنس میں آیا, تو کیا اب گورنمنٹ پہ دباؤ ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے, اور اگر لینا چاہے تو کہاں سے شروع کرے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے یہ گورنمنٹ پہ بالکل دباؤ اس لیے کہ گورنمنٹ کا کچھ نہیں رہی, ان کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں, ان کو جو سیکٹیرین گروپس ہیں جو ٹیررسٹ گروپ ہیں جس کو ساری دنیا نے بین کیا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان کو وہاں پہ کنفائن کریں جہاں جہاں وہ ہیں, اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کریں, نہ ہی ان کو یہ ٹکٹ دیں سینیٹرز کے لیے یا دوسری ان چیزوں کے لیے, چونکہ وہاں پہ یہ بہت سی کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تو اپنے گھر سے پہلے شروع کریں. پنجاب میں جو پنجابی طالبان ہیں یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, اس سے فوج میں تشویش اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ان کے لنکس ہیں ان جو ٹیررسٹ آپریٹ کر رہے ہیں فاتح کے علاقے میں.
صحیح,
جب تک ان کو ختم نہیں کیا گیا اس وقت. دوسری بات یہ ہے, میں ایک بات کروں گا, دیکھیے جب تک آپ کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا, اب لوگ بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کریں گے, صحت کا انتظام نہیں کریں گے, تو اس سے جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں اور فرسٹریشنز ہیں وہ بھی جنم دیتی ہیں اس قسم کے ایکسٹریمسٹ ذہن بنانے میں, جو کہ جس کی جداد میں یہ ٹیررزم کی شکل میں وہ باہر نکلتی ہے. اس لیے اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ ہے, چاہے وہ مصر کی اسٹیٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہے, کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک ان کا حقوق دیں اور ان کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. زبردستی کرنے سے
और जो डिक्टेटर्स होते हैं तो हमने देख लिया डिक्टेटर्स का क्या हशर हुआ, मुबारक का क्या हशर हुआ, उसके बाद गद्दाफी का क्या हशर हुआ, सद्दाम हुसैन का क्या हुआ। तो इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि आप अवाम को इस तरह नहीं दबा सकते, आपको वहाँ पे उनको इंसाफ देना होगा, उनको
सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए भी। डॉक्टर फारूक असना साहब हमारे साथ रहिएगा, चंद सेकंड की हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम रेडियो ऑन टीवी होंगे, हमारे सेटेलाइट व्यूअर भी हमारे साथ होंगे। चंद सेकंड की एक ब्रेक और इसी मौजू को हम जारी रखेंगे कि दाइश का उसका निशाना कोई भी जगह कोई भी इलाका हो उसको काउंटर कैसे करना है और दुनिया मुत्तहिद होकर क्या कर सकती है। चंद सेकंड की एक ब्रेक। वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन। और प्रोग्राम के पिछले हिस्सों में हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सिंध, वहाँ पे दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे हमने बात की है, सियासी जमातों की ताकत, उनका जोर और साथ साथ कुछ और पोलिटिकल नेरेटिव या पोलिटिकल फिलासफीज, गुड गवर्नेंस, ये सारे हमारे मौजूद वहाँ पर रहे। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिस गुफ्तगु को जारी रखेंगे वो हम बात करें दहशतगर्दी के ऊपर। पाकिस्तान अपना रिजॉल्व शो कर रहा है कि दुनिया को मिलके इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान वो भी यहाँ वाशिंगटन में आर्मी चीफ के इस दौरे में उनके साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उनका भी ये ख्याल था कि दाइश एक बड़ा ख़तरा है, अफगानिस्तान में इसकी प्रेजेंस है, पाकिस्तान में भी उसके लिए आना आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त है कि सारी दुनिया इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर काम करे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं फ्रांस हो या पाकिस्तान, तमाम जगहों से इन दहशतगर्दों का खात्मा करना बहुत ज़रूरी होगा, एक दुनिया की क़्यादत को मिल के आना होगा। दूसरा हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में आज वहाँ पे जो माली के अंदर एक दहशतगर्द ग्रुप है उसने पूरे एक होटल को यरगमाल बना रखा है, अभी तक ताहाल ये पता नहीं चला कि कौन सा ग्रुप उसमें शामिल या इन्वॉल्व है, लेकिन अमूमन यहाँ पे अलकायदा या उसके जो एफिलिएट्स हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास गाए बगाए वो दिलाते रहते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि आसियान का समिट जारी है, इतना हाई सिक्योरिटी के तहत ये हो रहा है, तो बाहर ये लगता है कि जैसे दुनिया को चाहिए कि वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करे, लेकिन उनके असरात अब बज़ाहिर ईमन जो सेफ़ जोन्स होते हैं वहाँ पे भी महसूस किए जाने लगे हैं, जा रही हैं। फ्रांस का वाक़या, फ़्रांस का सामने आपके सामने हुआ, प्रेसिडेंट फ्रांस के उस स्टेडियम में मौजूद थे जहाँ पे दाइश के जो एहलकार थे या उनके जो कारिंदे थे वो एक बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हुए। तो वर्ल्ड को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना है, क्या इसके लिए सरहदों की जो एक तख़सीस है या जो पाबंदियाँ हैं क्या उनको भी अब नरम करके देखना होगा और इसको एक ग्लोबल चैलेंज देखना होगा, ना कि किसी रियासत का ज़ाती चैलेंज। इस पर हम एनालिसिस लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल चीमा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक वीएन इंस्टीट्यूट, डॉक्टर फारूक असनाद साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, मुमताज़ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, और साथ साथ इस सेगमेंट में हम ये भी जानेंगे कि ये जो करंट इंसीडेंट्स हैं, एक सीरीज़ है दहशतगर्दी के वाक़ात की जो ऐसी तंजीमों की जानिब से सामने आई हैं जो अपने आप को मज़हब के साथ जोड़ती हैं, इस्लाम के साथ जोड़ती हैं, तो उसके बाद ख़ास तौर पे मगरब के अंदर, अमेरिका और वेस्ट के अंदर रहने वाले मुसलमानों पे किस नौयत का दबाव आ सकता है या आ रहा है और वो उसको किस तरीके से उसको काउंटर कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल सीमा साहब, हम आज माली में देखते हैं वहाँ पे अटैक हो गया, आसियान समेट, प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत सख्त करना पड़ी है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका ये ख्याल है कि टेररिस्ट थ्रेट्स यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। तो क्यों कर ऐसा ये फीलिंग आती है कि दहशतगर्द बज़ाहिर बहुत मज़बूत हो रहे हैं या उनकी जो नेटवर्किंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स एक्शंस?
मेरे ख्याल में सबसे पहली बात यह है कि ऐसे वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक टेररिस्ट थ्रेट जो है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं और पूरी इंसानियत जो है इससे अफेक्टेड है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हमने कोई इस पर एक अच्छी किस्म की बहस करनी है तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि इसका जो मिलिट्री सोलूशन है वो मिलिट्री सोलूशन बजाते खुद कामयाब नहीं हो सकता, हमें इनकी जो सियासी वजूहात हैं उसके पीछे जाना होगा कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी बुनियाद क्या है, और उन ग्रीवियंसेस को काफ़ी हद तक हमें एड्रेस करना पड़ेगा जो मुहरकात इसके पीछे हैं कि लोग क्यों आखिर टेररिस्ट अटैक करके अपनी भी जानें ज़ाया कर रहे हैं और पूरी दुनिया को भी एक तकलीफ़ में डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दाइश जो है ये फैल रही है, अब आपने देखा कि माली तक भी और भी मुख्तलिफ इलाकों में, और आपने बहुत ठीक कहा अफगानिस्तान में तो ये पहुंच चुकी है। मैं नहीं आपसे इतना शायद अग्री ना करूं آج نہیں تو کل تک ہو سکتا یہ پاکستان میں بھی آ جائے, اور یہاں یہ خطرات جو ہے ان کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے کہ پاسیبلٹی ہے.
جی میں بالکل آپ کی رائے کے حق میں ہوں, میرے تو خود ہی ہے, اگرچہ پاکستان کی فارن آفس بار بار یہ باور کراتا ہے کہ یہاں پہ خطرہ نہیں ہے یا فٹ پرنٹس نہیں ہیں, لیکن آپ کی طرح بہت سے انالسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ سارے انگریڈینٹس کمپوننٹس موجود ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتی ہے, اور میں اس رائے کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی اتفاق کرتا ہوں.
یہ دیکھیے فارن آفس جو ہے نا, ان کے جو اس قسم کی وضاحتیں ہوتی ہیں بہت پروٹوٹائپ قسم کی ہوتی ہیں.
صحیح,
پروٹوٹائپ قسم کی ہوتی ہیں. وہ ڈینائی اکثر آپ دیکھیں گے کہ فارن آفس کی جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ نارملی ڈینائلز ہی ہوتے ہیں.
صحیح,
کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ کسی اسٹڈی پہ وہ بیس نہیں ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ پاکستان میں جو رائے ہے وہ کافی ڈیوائڈیڈ ہے, نہ صرف کہ عوامی رائے جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے, حکومت کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی رائے بھی ڈیوائڈیڈ ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ داعش واقعی ہی مستقبل میں یہ خطرہ بن جائے گی پاکستان کے لیے.
صحیح,
بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی صرف افغانستان تک محدود ہے, اور ہم نے جو آپریشن کیا ہے ضرب عضب, اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں اس کے آنے کا یا پھیلنے کا کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے.
صحیح,
جس سے میں اتفاق نہیں کرتا.
صحیح, ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرے, یعنی وہ جیسے روٹ کازز ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, لیکن ایک چیلنج ہے جو بظاہر بہت قریب پہنچ چکا ہے, بڑے بڑے دارالحکومتوں کو وہ ایک طرح سے ٹھٹلا رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے, مسائل کافی بڑھ رہے ہیں, ان کے ایکشنز کافی بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو ریئیکشنز ہیں وہ بڑا سلیکٹیو ہے. کیا کرنا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل بیٹھ کے اس فینومینے کو ایڈریس کرنے کے لیے؟
جی, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ دشمن جو ہے یا جو ٹیررسٹ ہیں, جو بھی آپ ان کو کہہ لیجئے, یہ ویزیبل نہیں ہے. یا تو وہ فوج ہو, فوج کی تو باقاعدہ وردی ہوتی ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سے لڑائی کرتے ہیں ایک خاص منظم طریقے سے. انویزیبل ہوتے ہیں جی, یہ آپ کو نظر نہیں آتے, لوگوں کے بیچ میں اس لیے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی انویزیبل فورسز چاہیے, جن کو ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں. آپ کی جب تک انٹیلیجنس ایجنسیز مضبوط ہوں گی اور وہ آپس میں کوآرڈینیشن کریں گی, اس وقت ہی آپ ان کو انویزیبل اینیمیز کو قابو کر لیں گے. اب میں تھوڑا سا پاکستان کو آپ کو مثال دوں, یہاں بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آئی ایف آئی سے شروع کریں, ایم آئی سے شروع کریں, اور پھر پروونسز کی اپنی انٹیلیجنس ہیں, اور پھر آپ پولیس تک چلے جائیے. پاکستان میں یہ بہت سالوں سے اور عرصے سے بحث ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو بالکل نچلی لیول ہے, یعنی پولیس کی جو لیول ہے, انسپیکٹر کی یا تھانے کی, اس کی اور جو اوپر ہائیسٹ لیول آف انٹیلیجنس ہے, ان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے ادارہ بھی بنایا تھا جس میں کوئی کام نہیں ہوا, جس کو بجٹ تک نہیں دیا گیا, ایسا کام یہ تھا اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا کہ وہ ایک کوآرڈینیشن پیدا کرے, انفارمیشن شیئرنگ ہو, اور انفارمیشن شیئرنگ کر کے ہی آپ کوئی تصویر جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے اور آپ کو پتا چل سکتا ہے ان کی مومنٹس کیا ہیں یہ, اور یہ سارا انٹرنیشنل اس پر بھی آپ پھیلا سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ان کے فائنینسز جو ٹریل ہے وہ اس کو روکنا ہے, یعنی آپ نے یہ آفٹر آل وہ پیسے جب تک نہیں لیں گے, وہ کہاں رہیں گے, ہتھیار کہاں سے لیں گے, کس جگہ پہ رہیں گے, وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پتا کرنا ہے کہ فائنینشیل ٹریل کہاں سے, پیسے ان کو کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اور وہ فنڈنگ کا تانا بانا آپ کو گلف میں جا کے ملتا ہے. گلف سے ضروری نہیں ہے کہ ان کی حکومتیں فنڈنگ کر رہی ہیں, لیکن وہاں جو امیر لوگ ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں, کچھ ولفلی کرتے ہیں, کچھ ان ولفلی, وہ سمجھتے ہیں کسی مدرسے کو پیسہ دے رہے ہیں یا مسجد کو دے رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ ٹیررسٹوں کے بعد جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, اس وقت تک یہ سپاہی کھڑے کر دینا اور وردی پہنا کے سامنے, اس سے یہ معاملہ بالکل حل نہیں ہوگا. ان کے گھروں تک جانا ہوگا, ان کی جڑوں تک جانا ہوگا, اور وہاں پہ جا کے ان کو روکنا ہوگا. اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا, میں ریپیٹ کروں گا بات, لیکن بات ہے کہ انمی انویزیبل ہے.
ٹھیک ہے, انمی انویزیبل ہے, وہاں تک پہنچنا ہوگا. ڈاکٹر ظفر اقبال چیما صاحب, اب اگر ہم پاکستان کا کہیں, وہاں تو کہتے ہیں کہ اب نیکٹا اس کے لیے کچھ فنڈز بھی ایلوکیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن دنیا کے پاس تو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک پراپر نیٹ ورک ہے, اس کے باوجود یہ کیسے پینیٹریٹ کر لیتے ہیں, کیوں, کیا لوپ ہولز ہیں آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں تو جی سب سے بڑا لوپ ہول یہ ہے کہ عوام جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو شیلٹر جو ہے کسی نہ طریقے سے فراہم کرتے ہیں. ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ عوام نے کسی ٹیررسٹ گروپ کو किसी अकेले ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके किसी पुलिस को, किसी सिक्योरिटी एजेंसी को ये इतला दी हो कि उन्होंने यहाँ किसी टेररिस्ट को देखा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं।
सही।
वाई मैं फारूक अतनाज साहब से एग्री करता हूँ कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है पुलिस में, इंटेलिजेंस एजेंसी में, ISI में या दुनिया में कहीं भी बहुत सारी एजेंसी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी में एक तावन की ज़रूरत है।
ठीक है।
लेकिन जब तक वो आप देखें कि ये जो जिस किस्म की वॉरफेयर में ये लोग एंगेज हैं, जिसको आप कोई कह लें, आप लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कह लें, आप उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कह लें, आप उसको इंसर्जेंसी कह लें, ये कोई नई किस्म की वॉरफेयर नहीं है जो इन्होंने अडॉप्ट की है।
सही।
जैसे आपने अगर आप याद करें मौजे तुंग ने ये बात की थी कि गुरिल्ला जो है वो अवाम में ऐसे ही होता है जैसे फिश इन द वाटर।
सही।
तो अगर अवाम जो है ये इस किस्म के लोगों को शेल्टर देते हैं।
सही।
और हमें ये सोचना होगा कि लोग ये शेल्टर क्यों देते हैं, क्या वो रिलीजियस बुनियादें हैं, क्या वो समाजी बुनियादें हैं, क्या वो सियासी बुनियादें हैं, आखिर अवाम क्यों नहीं, क्यों इन लोगों को शेल्टर देते हैं और हुकूमत को, इंटेलिजेंस एजेंसी को
इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं? यानी एक तो शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एतमाद की कमी है। अमूमन हम देखते हैं कि जो अदम इस्तेकाम की शिकार रियासतें हैं वहाँ पे ये ग्रुप ज़्यादा पनपते हैं। और ये जो जिस इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी उसको स्ट्रगल किया है, सफ़र किया है, क्योंकि रियासती इदारों पर, पुलिस पे और बाकी पे भरोसा नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन देने के बजाय वो लोग इन्फॉर्मेशन अपने तक रखते हैं और समझते हैं कि अपनी जान बचाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहेगा, अब इसी से जो रेलिवेंट है, चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं अभी, ये जो यके बाद दीगरी कुछ वाक़ात हुए हैं वेस्ट के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर बज़ाहिर दबाव आ रहा है, अगरचे हुकूमतें अपनी कमिटमेंट का इजहार कर रही हैं लेकिन पब्लिक लेवल पे प्रेशर्स अगर कहा जाए कि नहीं है तो ये बिल्कुल बेजा होगा। यहाँ वाशिंगटन में आज इस्लामिक स्टेट या दाइश के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है 3 बजे, मुसलमान कम्यूनिटी और दीगर नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी वो भी यकीन इसमें शरीक होंगे। माइक गॉस अमेरिकन टुगेदर तंजीम है, उसको प्रिजाइड करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं और इस रैली को मुस्लिम्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, ये उनकी इस रैली का नाम है, आज वाशिंगटन DC में अमेरिका के दारुल हुकूमत में उन्हें धोने जा रही है, कुछ उनसे अपडेट लेते हैं। माइक आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है।
जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे फोन पर लेने का। आज ये बहुत जरूरी दिन है खुसूसन मुसलमानों की जिंदगी का, और सारे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ दुनिया भर के, खुसूसन अमेरिका के मुसलमानों के। जी मैं आल्सो, मेरी एफिलिएशन है अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से भी है, जिसी से हमें काम कर रहे हैं। आज दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, दोनों का मकसद एक ही है कि एक अमेरिका एक ऐसे मुल्क बनाए जिसमें कोई किसी से हमें डर ना रहे, ऐसा सुकून का मुल्क बनाए। इसके लिए काफी काम होते हैं, जो आज काम कर रहे हैं, रैली जो हो रही है, ये क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं हम ISIS और टेररिस्ट कि ये जो काम कर रहे हैं गलत काम है। अब देखिए बुश साहब ने बमबारी की, प्रेसिडेंट ने, उसका कुछ नहीं बना, उससे टेररिज्म और बढ़ गई।
जी, मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन करने लगा था कि इसमें जो इस वक्त मगरबी ताकतें जो एक्शन लेना चाहती हैं या जो समझती हैं कि दाइश एक खतरा है, जब वो अपने कोई प्लान्स ले आउट करती हैं तो हमें बहुत सारी आवाज़ें ये सुनने में आती हैं कि दाइश जो है वो दरहकीकत मगरबी ताकतों की ही पैदा करता है या दीगर इस्लामिक जो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, तो मगरबी मुल्कों या रियासतों की क्या जिम्मेदारी है कि वो इससे अपने आप को इससे आइसोलेट करें, अलग करें और ऐसे एक्शंस लें कि इनकी किसी भी लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हौसला अफजाई ना हो?
कुछ भी हो, मगरबी ममालिक की पैदावार हो या कुछ भी हो, गलत काम जो कर रहे हैं उसके वो कर रहे हैं इस वक्त, दाइश के लोगों ने गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा रवैया ये होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट ओबामा कहे तो इसका कहना चाहिए, देखो तुम जो भी काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक 3 दिन की वार्निंग देता हूँ, इस 3 दिन में आप हथियार डाल दें, खामोशी से अपने आप को संभाल लें या रिपेंट करें, माफी मांग लें। अगर नहीं मांगे तो मैं 1 दिन और की वार्निंग देंगे, अगर वो भी नहीं मानेंगे तो तुम इस सारे को गैस करेंगे, मारने के लिए नहीं, गैस से उनको अंधा करके पिकअप करने के लिए और उनको कोर्ट।
लेकिन वो तो हमारे एनालिस्ट बता रहे हैं ना, वो आप उनको किसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो तो हमारे दरमियान रहते हैं, पता ही नहीं चलता, क्या पता हो, क्या उनके कोई ठिकाने हैं, क्या उनके पास कोई टेरिटरी है जो उन्होंने कैप्चर कर रखी है, स्ट्रगल है उनकी दाइश की खास तौर पर उनकी बात करें, लेकिन वो कहीं आपको एग्जिस्ट करते हुए तो नजर नहीं आएंगे, नॉन स्टेट एक्टर, वो तालिबान हो या दाइश हो।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मगर जो एरिया, जियोग्राफिया का जो एरिया है छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा नहीं है, उसमें हर 5 मेल पे जाके पिकअप ऑल द पीपल वी कैन, उसमें काफी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा फौरी, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको ट्रेल पे डालना है। ये साबित करना है दुनिया को, ये 2 मसले ही यहाँ पे, उनको साबित करना है और जो नए बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं उस बुनियाद पे उनको साबित करना है कि ये कुरान में कहीं नहीं है जो बात कुरान का हवाला दे रहे हैं। कुरान कहता है कि ये कुमार ये की जिंदगी आप लेंगे तो सारे जहां की जिंदगी एक ही बचाएंगे, तो इस लिहाज से ये कम्प्लीटली कुरान के अपोजिट काम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर ये बताइएगा, आज की रैली में आप कितनी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत है आपकी?
देखिए 3 दिन के मौके में हमने किया, 2 दिन का कल हमारी कंफर्मेशन हुई, 2 दिन में हमें सबसे बड़ी बात यह है कि फॉक्स न्यूज में स्टुअर्ट वार्नी जो है साहब उन्होंने ऑफर की है और अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे, हमें चाहिए कि सारे अमेरिकन साथ हों इसमें, मुसलमान गैर मुसलमान सब साथ हों, क्योंकि ये मसला सबका है, मुसलमानों का ही नहीं है, अमेरिकी मसला है।
Exactly.
तो वो अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे, और उससे दूसरा फायदा ये होगा कि हम मुसलमानों का हमेशा सब यही कहते हैं कि कहाँ है वो मुसलमान जो इन लोगों को कंडेम करते हैं, सबके सब ने हजारों बार लाखों की तादाद में कंडेमनेशन भी, मगर लोग इग्नोर करते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका माइक होस्ट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, मुझे प्रोग्राम को चुके सेगमेंट को सम अप करना है, आखिरी कमेंट्स लूंगा मैं सेगमेंट को वाइंड अप करने के लिए अपने दोनों मेहमानों के, और फिर मुना काजिम साहब भी हमारे साथ हैं, यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर फारूक असनाद साहब सम अप कीजिएगा चंद सेकेंड में, मैं अगर कहूँ कि क्या इसका रिजॉल्व एक ये भी है जैसे आपने कहा कि बाकी तो वो स्टेट्स के अंदर इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना जैसे इंटेलिजेंस वगैरह, लेकिन जो कमज़ोर रियासतें हैं उनको मजबूत करना, और सेकेंडली एक काउंटर नैरेटिव देना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और एक जो ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, आलमी शहरी होने का कंसेप्ट, वो सारी जिम्मेदारियाँ वो ट्रांसफ़र करना अगली जनरेशन तक, ही उसका सोल्यूशन हो सकता है।
बिल्कुल आपने ये सही कहा जो स्टेट की आपने बात की, इसलिए आप देखिए कि दाइश ने जो चैलेंज किया इराक में, सीरिया में और लेबनान में और जॉर्डन में, जॉर्डन और लेबनान में वो इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि वहाँ पे स्टेट स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, वहाँ की फौज इंटैक्ट थी, वहाँ के जो अदारे हैं वो इंटैक्ट थे मुकाबलतन सीरिया और उनके इराक के मुकाबले में
जी।
और ये वेस्ट अपनी जिम्मेदारी से वो परे नहीं हट सकता, इसलिए इन्होंने ही उनके अदारे तबाह किए हैं, उन्होंने इराक को तबाह किया, उसकी फौज को तबाह किया, अब वो नई फौज बन नहीं रही। सीरिया पे अगर आप आए तो उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को इनकरेज किया कि वो बशर असर की हुकूमत के खिलाफ एक जद्दोजहद शुरू करें, यानी कि मिलिटेंसी शुरू करें। उस मिलिटेंसी को एक तो जेन्युइन अपोजिशन थी, तो जब उन्होंने मिलिटेंसी शुरू की तो ये ग्रुप भी शामिल होना शुरू हो गए और ये ज्यादा हावी उनके ऊपर हो गए।
ठीक है,
इसलिए जब आप स्टेट स्ट्रक्चर को कमजोर करेंगे और हुकूमतें तब्दील करने की कोशिश करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, तो फिर इस किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको भी स्पेस मिल जाएगी
और ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा जी। 30-35 सेकंड में डॉक्टर जफर इकबाल जी साहब आप इसको सम अप कीजिएगा, एक जैसे मैंने कहा कि आलमी शहरियत का कंसेप्ट,
इराक में और सीरिया में और लीबिया में जिस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके एलाइज की तरफ से, ये उसका एक रिएक्शन है, और इस किस्म के रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना होगा ताकि इस किस्म की फोर्सेज जो हैं ये पैदा ना हों। या ये कहा जा सकता है कि वियतनाम जैसे या जॉर्डन जैसे मुल्कों में तो रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो बड़ी मुसलमानों की रियासतें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है जिसको आसानी से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, उसमें यही है कि एक ऐसी उनके जो इशू बेसिक हैं आखिर उनको भी सामने रखा जाए कि क्यों नॉन स्टेट एक्टर जो हैं इस तरह क्यों हथियार उठा के क्यों फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो पहले एक आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक सलूशन तलाश करना होगा जिसमें आपने इसमें मिलिट्री एक्शन को इंटेलिजेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के साथ साथ आपको सियासी और समाजी किस्म की जो मुहकात है उनको भी एड्रेस करना होगा, फिर ही इन चीज़ों पर पाबंदी जो है वो
आ जा सके, इन कंट्रोल किया जा सकेगा। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक बी एन इंस्टीट्यूट आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक असनाद साहब आपके भी आप मशहूर हैं कि आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर मोना काजिम शाह साहब हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं वॉशिंगटन अमरीका बेस्ड हैं। डॉक्टर मोना ये बताइएगा जब दाइश कार्रवाई करती है इस्लाम अलकायदा जैसे आज माली के अंदर मुमकिन तौर पर चूँकि वहाँ पर ज़्यादातर उसका असर रसूख रहा है, तालिबान कोई एक्टिविटी करते हैं अलशबाब मिली और ये वो सारे मिलिटेंट्स हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके एक्शंस के नतीजे में बाहसियत एक मुसलमान के अमेरिका में रहते हुए आप पे क्या दबाव फील होता है और आप उसको कैसे काउंटर करती हैं?
शुक्रिया असद मुझे वक्त देने के लिए. सबसे पहली बात तो असद ये है कि एक मुसलमान होते हुए वेस्ट में रहते हुए हम लोगों पे ये जिम्मेदारी है कि हम इन की एक्टिविटीज को एक तो बहुत ज्यादा खुल के डिनाउंस करें क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ऑनेस्टली स्पीकिंग फुकदान लगा. क्योंकि जैसे ये पेरिस का अटैक हुआ था हमें सड़कों पे निकलना चाहिए था और हमें कहना चाहिए था कि ये हम में से नहीं है, जिसे आजकल मॉडर्न ट्रेंड में होता है कि नॉट इन आवर नेम, वी शुड हैव डन दैट. और अब बहुत यू नो बहुत खुशाइन बात है कि पिछले दिनों में हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीपल आर पुटिंग इट टुगेदर. बट उसी वक्त जो एक इनको डिसोन करने वाली बात होती है ना एज अ मुसलमान, पहली बात तो ये कि मीडिया और लोगों को चाहिए कि इनका नामी दाइश के तौर पे इनको एक नाम इनका स्टैंडर्ड पे किया जाए,
इस्लामिक स्टेट
का नाम इनके साथ नहीं जोड़ा जाए क्योंकि दैट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशन पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर. और दूसरी ये कि इनको इनकी मौत ही ये है कि इन्हें एक्नॉलेज ना किया जाए एज अ मुसलमान क्योंकि ये हम में से नहीं है. ये यकीनन इनका मजहब हो सकता है कि ये इस्लाम हो इनका मजहब, लेकिन ये हम में से नहीं है और ये बात हमें खुल के मुसलमानों को कहनी चाहिए वर्ल्ड वाइड.
सही. तो लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ रैलीज़ वगैरह हो रही हैं और भी चैनल्स के ऊपर हमने देखा अमरीकी परिषद में आके मुसलमान खवातीन अपने आप को एसोसिएट कर रही हैं, लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? लेकिन क्या सोसाइटी की सतह पर रियासतें, तो हम मानते हैं कि वो ये तफरीक रखती हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्या सोसाइटी की सतह पर ये मैसेज कम्युनिकेट होता है कि मुसलमान यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि दाइश के एफिलिएट्स हों या अलकायदा के?
बिल्कुल, ये साबित होता है और हमें करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कोशिश भी करनी चाहिए. उसके लिए मैं कहूँगी कि जो मस्जिदों में या अपने हम लोग अपने ही हलके में ये जो कर रहे हैं चीज़ें और इनको डिनाउंस कर रहे हैं, ये एक बाहर निकल के करें, एलियनेट इस वक्त ना करें मुसलमान अपने आप को, ये बाहर निकल के करें, चर्चेस के साथ कोऑर्डिनेट करके करें, रैबाइज के साथ कोऑर्डिनेट करके करें, आपस में इंटरफेथ उसमें करें. ये इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमें अपनी की मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त सड़कों पे निकलना चाहिए और हमें ये मैसेज देना बहुत जरूरी है इस वक्त मुसलमानों को.
अच्छा, लेकिन
दूसरी बात मैं बताऊं असद कि ये एक बड़ी परेशान कुन बात है जो आज ही सामने आई है कि नॉर्थ टेक्सस में ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. FBI ने आज जारी किया ये बयान कि नॉर्थ टेक्सस में ISIS जो है वो रिक्रूटमेंट कर रही है और उनको फिलहाल पकड़ने का कोई उनके पास सॉलिड तरीका नहीं है. ये एक बेइंतहा यू नो ये होम ग्राउंड टेररिज्म जो है ना, इसके ऊपर भी एक
होम ग्राउंड टेररिज्म में उनका फ्यूल कौन बनते हैं? ज्यादातर वो बच्चे जिनका ताल्लुक मुसलमान घरानों से है या इवन वो बच्चे भी?
जरूरी नहीं है सर, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस और एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि होम ग्रोन, क्योंकि अगर वो तुम है भी मुसलमान, जैसे खातून जो पकड़ी गई उनका उनकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एक औरत थी और इस किस्म के लोग जो है वो ज्यादा यू नो दे आर मोर ससेप्टेबल टू फॉलिंग प्रे इन लोगों के हाथों में. और यू नो NPR पे भी परसों एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बड़ा ऑनेस्ट डिस्कशन हो रहा था कि ये हमें इस चीज को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुसलमान या गैर मुस्लिम या कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर इनके हत्थे चढ़ रहे हैं तो क्यों चढ़ रहे हैं और होम ग्रोन टेररिज्म यूरोप में अमेरिका में क्यों पनप रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी तह में उतरना होगा वरना हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोना काजिम शाह, आपने हमें ज्वाइन किया, अमरीका बेस्ड जर्नलिस्ट एनालिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया. सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले आखिरी सेगमेंट पर बात करेंगे.
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے لائٹ اسپورٹس پہ ہم بات کریں گے. پورے پروگرام میں ہم انفارچونیٹلی دنیا کو جو چیلنجز ہیں, سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی کا, اور تھرو آؤٹ ہمارا اس پہ فوکس رہا ہے. لاسٹ سیگمنٹ اسپورٹس کا, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے. پاکستان ورسز انگلینڈ متحدہ عرب امارات میں سیریز جاری ہے, آج سیریز کا چوتھا اور غالباً آخری, اگر مجھے غلط نہیں ہوں میں تو آخری میچ یہ کھیلا جا رہا ہے. انگلینڈ کو 2-1 سے برتری حاصل ہے. پاکستان اگر یہ میچ جیتتا ہے تو سیریز برابر ہوگی, ورنہ انگلینڈ 3-1 سے یہ سیریز جیت کر اپنے نام کرے گا. پاکستان کے لیے مزید چیلنجز ہوں گے ورلڈ رینکنگ میں, اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایون ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھی پاکستان کو اپنی رینکنگ بہتر کرنا ہوگی. آئندہ ورلڈ کپ کا جو فارمیٹ ہے انالیسز ہم لیں گے. پاکستانی ٹیم خاص طور پہ او ڈی آئی میں اس کو کیا مشکلیں یا مصیبتیں ہیں جس کا اس کو سامنا ہے. ٹیسٹ ٹیم میں یہی ٹیم آلموسٹ پرفارم بہت بہتر کر رہی ہے, ورلڈ رینکنگ میں بھی وہ نمبر 2 پہ جا پہنچی ہے 12 سال کے عرصے کے بعد. لیکن او ڈی آئی میں سفرنگز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. کمپیٹیبل یا ایک جو شاندار وننگ کمبینیشن ہوتا ہے وہ نہیں بنا پا رہی ہے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ پاکستان پلئنگ 11 کے لیے. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ممتاز کرکٹ اینالسٹ ہیں, ہمارے پروگرام میں اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. چوتھا میچ جاری ہے, 355 کا ٹارگیٹ, 64 پہ ایک آؤٹ ہے پاکستان کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان ٹیم یہ سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟
اب اس سچویشن میں جب کہ 350 سے بھی زیادہ رن بنا دیے انگلینڈ نے, تو بظاہر تو اب کوئی چانس نظر نہیں آتا, کیونکہ پاکستان کم از کم اس طرح کے میچز نہیں جیتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ 3-1 کے مارجن سے جو ہے وہ انگلینڈ یہ سیریز جیت لے گا, اور جس طرح انہوں نے پچھلے سیریز میں بھی اسی طرح کچھ کیا تھا, ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد ون ڈے سیریز کو سویپ کیا تھا, کلین سویپ کیا تھا. تو اب میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اس وقت سیریز جو ہے 3-1 سے انگلینڈ جیت جائے.
دوسری وکٹ بھی پاکستان کی گر گئی. اچھا یہ بتائیے گا پاکستان او ڈی آئی میں پرابلم کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ کرکٹ کے شائع کی حیثیت سے بتا سکتا ہوں, اظہر علی اچھی چوائس ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو اوپن پہ لے کے آئے, کریز پہ وہ کھڑے ہو کے کھیلتے نہیں ہیں, موو کرتے رہتے ہیں. کیا اس اسٹریٹجی کے ساتھ, اس اپروچ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں؟ ایک بات, اور دوسری آبزرویشن یہ ہے کہ پلیئرس بہت بے شمار ٹیم میں ایسے ہیں جن کا گیمس کا اسٹائل ایک جیسا ہے, وہ ایک دوسرے کو ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی اگریشن اس میں, پراپر اگریشن, ٹیکنیک والا اگریشن وہ نظر نہیں آتا ہے ٹیم کے اندر. کیا اس کمبینیشن کے ساتھ, اسپیشل بیٹنگ کمبینیشن کے ساتھ پاکستانی ٹیم کبھی اوپر آ سکتی ہے؟ جو کہ کرنٹ جو ماڈل ہے کرکٹ کا, ون ڈے کا خاص طور پہ, وہ بہت مختلف ہوتا ہوا نظر آتا ہے باقی دنیا میں.
جی آپ نے جو باتیں کی ہوں اس میں بہت ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. ایک تو پاکستان جو پہلے بیسک بات ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ شاید کہہ چکا ہوں, ہم یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اور جو پلیئر ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایک ایوریج پلیئر ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں جسے ہم کوالٹی پلیئر کہتے ہیں وہ ہم نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو جب ایوریج پلیئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرفارمنس ہی اس وقت کرتا ہے جب اسے آئیڈیل کنڈیشن ملے.
صحیح.
دوسرے اب آ جائیں کہ ٹیم کی بات کر لیں, جو کوچ وقار یونس ہیں, کچھ انہوں نے ایک تو ایگو کے ایشوز بنائے ہیں پرسنل, ان کا جو جسے کہتے ہیں
پسند ناپسند ہے لوگوں کے بارے میں,
کے خلاف رہتا ہے, جس میں خاص طور سے ابھی ہم نے احمد شہزاد سرفراز کے ساتھ بھی ورلڈ کپ میں دیکھتے رہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں جس میں آپ اگر ایز اے کوچ لائکنگ ڈس لائکنگ اور اس کے بعد پھر ٹیم کمبینیشن صحیح نہیں بنایا, اور ایسے پلیئروں کو اتنی زیادہ پلیئروں کو اپرچونیٹی دے دی ہے کہ وہ ایک ہی دو میچ کھیل کے ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں, یہ ان میں پورا اوور آل جسے, یا تو میں یہی کہوں گا کہ ان کی نالج ایز اے کوچ اور جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کی نالج شاید نہیں کر پاتے کہ یہ پلیئر کس لیول پہ جا کے پرفارم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہر ایک کو ٹرائی کرتے ہیں, پھر جو فیل ہو جاتا ہے اسے نکال لیا, پھر دوسرا لے آتے ہیں. تو ٹیم کا جو کمبینیشن ہے وہ پراپر کمبینیشن بنا نہیں پا رہا ہے, جبکہ اب انہیں ایسی اتنے عرصہ ہو گیا اس بات کو کرتے, اب تک کسی نہ کسی آخری ڈیسائڈ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم ان, یہ ہمارے مین پلیئر ہیں اور یہ ہماری سیکنڈ اسٹار.
صحیح.
تو ابھی تک وہ
یہاں آپ نے درست کہا, یہ ایگوز کا مسئلہ لگتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑے کچھ پلیئرز ناکام رہے ورلڈ کپ میں, جیسے عمر اکمل کا نام ہے, شعیب مقصود کا نام ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دنیا ان کے پوٹینشیل کی موترف تھی. تو بجائے اس کے کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کے ایٹیچیوڈ میں ایشو آتا ہے اس کو فکس کیا جائے, ٹیم سے نکال دیا جانا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگ مینیج کرتے ہیں پلیئرز کو اور پلیئرز کے اسکلز کو وہ پالش کرتے ہیں. اسی طرح مطلب آنیسٹلی بالکل سمجھ نہیں آ پاتی کہ پاکستان کی ٹیم اور بیٹنگ کن پیٹرنس کے اوپر سلیکٹ ہو رہی ہے. لائک
دیکھیں جو یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں, جو ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر ہے بیسیکلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو پرفارم کرتا ہے جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو وہاں کی جو ریکوائرمنٹ اس سے وہ کافی کم نیچے اس کا گراف ہوتا ہے.
جس وجہ سے وہ ہر پلیئر یعنی زیادہ تر پلیئر جو ہے وہ اس لیول پہ آ کے پرفارم نہیں کر پاتے.
صحیح.
تو یہ تو ایک پرانی ہم یہاں بات کرتے آ رہے ہیں کہ جی اسٹرکچر کو صحیح کرنا, وہ کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا. اصل میں کرکٹ جو صحیح ہونی ہے وہ اگر ہونی ہے تو گراس روٹ سے ہونی ہے, اس میں لگنا ایک ٹائم, وہ یہاں کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے.
صحیح.
اب کسی فیز میں آ کے اگر پاکستان ٹیم جیت جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہماری کرکٹ صحیح ہو گئی. انفیکٹ کرکٹ صحیح نہیں ہوتی, اس فیز میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کے فیور میں چلی جاتی ہیں, جس سے ابھی ٹیسٹ سیریز ہوئی
جی.
تو وہاں پہ کنڈیشن آپ کو مل گئی, کچھ وہ خراب کھیل گیا کوئی اچھا کھیل گیا, آپ اس بیس پہ آپ یہ کہہ دینا کہ ہماری کرکٹ صحیح ہوگی وہ غلط ہے. تو کرکٹ انفیکٹ صحیح نہیں ہوئی ہے. اب جو پلیئر ڈیولپر ہے وہ ظاہر اسی طرح ہے کہ وہ جب ٹاپ کلاس کرکٹ پہ آتے ہیں تو وہ کچھ اپنی پرسنل سمجھداری سے تھوڑا بہت مینج کر لیتے ہیں, مگر ایک ایز اے
بہت شکریہ آپ کا جلال الدین صاحب, آپ نے ہمیں جی ہاں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اس پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.